SBS हिंदी के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के समाचार। 5 में से 4 राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने बिना समय गंवाए आने वाले चुनावों की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी हैं। चुनावी परिणामों के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में 2 दिन बड़े रोड शो किए। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इसी साल दिसंबर में चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की हार के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जिम्मेदार ठहराया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भी उनकी इस बात पर सहमति जताई है और ईवीएम की फॉरेंसिक जाँच की मांग की है।
आप कह रहा है कि यूपी में बीजेपी जीता है, आप अगर इसको अच्छा से कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख लो, अखिलेश जी का वोट था पहले 21%, अभी उसको 37% का आसपास वोट मिला। वो लोग जब गवर्नमेंट में बनाया था अखिलेश, तब भी उसका वोट परसेंटेज था, सो फार आई नो 36% समथिंग। मेरे को जो लगा कि इतना ईवीएम का खिलाफ में कंप्लेन हुआ, एंड बनारस डीएम इज ऑल्सो सस्पेंडेड, सो फार आई नो, आई हैव सीन द पेपर। So, if a DM is suspended because of his EVM machine को उठाने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा ये grievances है। हमको लगता है अखिलेश को हरा दिया गया है, ये बहुत सारे लूट चला है, लूट भी चला है। अखिलेश को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, जनता का पास जाना चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए कि हॉर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, जो हम कहते हैं कि फोरेंसिक टेस्ट होना चाहिए, कि ये वही मशीन है जिसमें लोगों ने वोट दिया और वही मशीन है जो दोबारा लेके आया।
उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद रविवार को कांग्रेस की संसदीय रणनीति समिति की बैठक हुई। पंजाब में बड़ी हार के बाद अब कांग्रेस की सरकार केवल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ही सिमट गई है। श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई ये बैठक 4 घंटे चली, जिसमें हार के कारणों की विवेचना की गई। इसके अलावा यूक्रेन से छात्रों की वापसी, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के लिए MSP जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। साथ ही विपक्ष के साथ मिलकर मोदी सरकार को कैसे घेरा जाए, इस बारे में भी बात हुई। गौरतलब है कि ये बैठक ऐसे वक्त हुई जब कांग्रेस के असंतुष्ट धड़े G23 के कुछ नेताओं ने शुक्रवार रात को बैठक की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद के घर हुई इस बैठक में मनीष तिवारी और अन्य नेता शामिल हुए थे। इस सब के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने की पेशकश की है।
राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए, पार्टी एकजुट रहे और रहेगी, रहती आई है उनके नेतृत्व में। इस परिवार की बात करते हैं, 30 साल में इस परिवार का कोई व्यक्ति ना प्रधानमंत्री बना, ना मुख्यमंत्री बना, ना वो मंत्री बना है, तब भी कांग्रेस की कमान उनको क्यों दी जा रही है? कोई जवाब समझने वाले समझते हैं कि तमाम वर्गों को, तमाम धर्म के लोगों को, सबको विश्वास परिवार पार्टी है, और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए परिवार का होना जरूरी हमारे लिए, बस खत्म हुई बात।
इन नतीजों के बाद न केवल कांग्रेस पर अंदरूनी चुनाव कर पार्टी की लीडरशिप बदलने का दबाव बढ़ता जा रहा है, बल्कि अन्य क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस से कन्नी काटने लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद श्री सुगाता रॉय ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उसे भाजपा के ताकतवर होने का जिम्मेदार ठहराया है।
कांग्रेस से अलग हूँ, कांग्रेस का विरोधी भी हूँ, जहाँ तक बीजेपी को विरोध करना है हम भी करेंगे, कांग्रेस भी अपना रास्ता से करे, लेकिन ये दिखा जाता है कि दिन पर दिन कांग्रेस कमजोर होते जा रहा है, तो ये कहाँ तक पहुँचेगा हमें पता नहीं। तृणमूल को अपना बलबूते पर आगे जाना है और उसी का कोशिश हम करेंगे, लेकिन कांग्रेस का कमजोरी के कारण बीजेपी को ज्यादा शक्ति मिला है, तो कांग्रेस को अपन को सुधारना चाहिए, उसका पार्टी के अंदर से भी सुधार का बात आ रहा है, तो इसी पर उनको ज्यादा चिंतित होना चाहिए।
भाजपा की इस धमाकेदार जीत से विपक्ष को संसद में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इन चुनावी नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में अपने संख्या बल के आधार पर बिलों को पारित कराने में समर्थ हो जाएगी। फिर भी विपक्ष सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार को बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज दर में कटौती और युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई मामलों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। यूक्रेन रूस युद्ध के मद्देनज़र देश की सुरक्षा और आर्थिक तैयारियों पर प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। पश्चिमी यूक्रेन के युद्ध की चपेट में आने के संकेतों के बीच भारत ने अपना अंतिम दूतावास भी बंद कर उसे पोलैंड शिफ्ट कर दिया है। और अब पेश हैं खेल जगत के समाचार। पहला टेस्ट मैच पारी से हारने के बाद अपना सम्मान बचाने में जुटी श्रीलंकाई टीम का बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भी एक और हार बचा पाना बहुत मुश्किल हो चला है। भारत द्वारा दिए गए 447 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए मेहमान टीम ने रविवार को दूसरे दिन का खेल खत्म होने के समय एक विकेट पर 28 रन बना लिए हैं। अभी 3 दिन का खेल बाकी बचा है। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 9 विकेट पर 303 रन बनाकर घोषित कर दी थी। श्रीलंका की टीम अपनी पहली पारी में 109 रनों पर ही दूसरे दिन के शुरुआती घंटे के खेल में ढेर हो गई थी। इसमें जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि अश्विन और शमी ने 2-2 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट झटका। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त करने की अनुमति दीजिए। SBS हिंदी सेवा की ओर से आप सबको नमस्कार।